नमस्कार भारत, आज है 16 जनवरी दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया लापता होने के बाद बेहोशी की हालत में मिले, अस्पताल में चल रहा है इलाज।
ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ डॉक्टर तोगड़िया की कुछ अनबन हो चुकी है।
डोकलाम पर सेना प्रमुख बिपिन रावत के बयान पर चीन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। भारत और इसराइल के बीच 9 समझौतों पर हुए दस्तखत, लेकिन नेतन्याहू और मोदी के सामने आगे की चुनौती क्या होगी?
जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए आने वाले समय में, जिस तरह का इनोवेशन इकोसिस्टम भारत को चाहिए आने वाले समय में, वो इसराइल हमको दे सकता है, और इसराइल को जिस तरह का मार्केट चाहिए वो भारत दे सकता है।
कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कल अहमदाबाद में कथित तौर पर लापता हो गए, जिसके बाद वो अहमदाबाद के एक अस्पताल में आधी बेहोशी की हालत में भर्ती पाए गए। उनकी हालत खतरे से बाहर है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में प्रतिद्वंद्वी लड़ाकों से लड़ाई के दौरान कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूहों के बीच हिंसा मैटिगा एयरबेस पर हुई, जो त्रिपोली का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके कारण विमान सेवाओं पर भी रोक लग गई। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि गोलीबारी में 5 विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के वापस म्यांमार भेजने का संयुक्त राष्ट्र तब तक समर्थन नहीं कर सकता है जब तक उनकी सुरक्षित वापसी की निगरानी का मसला साफ न हो जाए। वहीं यूनिसेफ यूके की उप कार्यकारी निदेशक लिली कप्रानी ने कहा है कि शरणार्थियों की अस्पष्ट कानूनी स्थिति बच्चों के लिए चिंताजनक है। हम जानते हैं कि सीमा पर म्यांमार से बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट कानूनी स्थिति के पहुंच रहे हैं, और फिर उनके बच्चे भी इसी समस्या के साथ पैदा हो रहे हैं। अगर हम में से किसी का बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले नाम देते हैं और फिर उसके जन्म का पंजीकरण होता है, जो उसे कानूनी पहचान देता है। ये थे यूनिसेफ यूके की उप कार्यकारी निदेशक लिली कप्रानी के शब्द। एक भगोड़े पुलिस पायलट को पकड़ने के अभियान में वेनेजुएला में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑस्कर पेरिस पर पिछले साल विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकारी इमारतों पर हमला करने का आरोप है। उन्होंने चोरी किए गए हेलीकॉप्टर से ग्रेनेड फेंके थे। इससे पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा था कि प्रशासन उनके आत्मसमर्पण पर समझौता करने की जगह उन्हें मारना चाहता है। आप सुन रहे हैं पीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं द्वारा आर्थिक सुधार की मांग के बाद ग्रीस की संसद ने कुछ सुधारों को अनुमति दी है। इसमें हड़ताल बुलाने के लिए कठोर नियम और बंद व्यवसायों को खोलने जैसे उपाय शामिल हैं। ग्रीक प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास ने कहा है कि ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में मदद करेंगे। मुश्किल समय अब हमारे पीछे है और अर्थव्यवस्था संकट से हुए जख्मों को भरने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और देश को वहां ले जा रहे हैं जहां उसे होना चाहिए। अब हमारे सामने चुनौती है, एक ऐसी चुनौती जिसे हमने सिर्फ विकास के रूप में बयान किया है। ये थे ग्रीक प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास के शब्द। कैलिफोर्निया में पुलिस ने सिटी ऑफ पेरिस के एक घर से भयावह स्थिति में रह रहे 2 से 9 साल के 13 भाई बहनों को बचाया है। रविवार सुबह एक लड़की ने घर से भागने के बाद आपातकालीन सेवाओं को बताया था कि उसके भाई बहनों को बंदी बनाया गया है। पुलिस कार्यालय ने बताया है कि इन बच्चों को जंजीर से बांध कर रखा जाता था। इनके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने कहा है कि वो उत्तरी सीरिया में कुर्दों की स्थिति पर हमला करता रहेगा। उन्होंने अमेरिका द्वारा 31,000 लड़ाकों का बल खड़ा करने की योजना की आलोचना की है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा है कि वो इस बल को नष्ट कर देंगे क्योंकि इसमें अधिकतर कुर्दिश लड़ाके होंगे जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी कहा है कि वो किसी भी नए बल को कुचल देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थन वापस ले लेने के बाद रोमानिया के प्रधानमंत्री मिहाई टुडोसे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 7 महीने से इस पद पर थे और 1 साल के अंदर पद छोड़ने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। हाल के महीनों में न्यायिक प्रणाली में विवादास्पद सुधार के कारण देश में कई प्रदर्शन भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कल अचानक लापता हो गए। कई साल पुराने एक मामले में राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी और फिर पता चला कि दोपहर बाद से डॉक्टर तोगड़िया का कोई अता पता नहीं है। वीएचपी कार्यकर्ता परेशान हुए और उनकी चारों ओर खोजबीन शुरू हो गई और फिर देर शाम डॉक्टर तोगड़िया की खबर इस रूप में सामने आई कि वो बेहोशी की हालत में अहमदाबाद के एक इलाके में पाए गए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
वीएचपी के तेजतर्रार नेता प्रवीण तोगड़िया की सोमवार को अचानक हुई गुमशुदगी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया था। दरअसल राजस्थान की पुलिस एक 10 साल पुराने मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार करने अहमदाबाद पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक घर पर तलाश करने पर जब तोगड़िया नहीं मिले तो राजस्थान पुलिस उन्हें बिना गिरफ्तार किए वापस लौट गई। उधर जब कार्यकर्ताओं को इसकी खबर मिली तो वो उन्हें ढूंढने में लग गए, लेकिन तोगड़िया का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो कहां गायब हो गए। सोमवार दोपहर बाद से प्रवीण तोगड़िया की खोजबीन की जा रही थी। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने 16 पुलिस थाने में जाकर पुलिस के साथ गर्मागर्मी भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रवीण तोगड़िया को एक शख्स के साथ दोपहर में ऑटो रिक्शा में जाते देखा गया था, लेकिन इस खोजबीन में नाटकीय मोड़ तब आ गया जब तोगड़िया देर शाम अहमदाबाद के चंद्रमणि अस्पताल में पाए गए। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर रूप कुमार अग्रवाल ने बीबीसी को बताया,
अभी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की हालत पहले से बहुत अच्छी है, ऐसा कॉन्शियस है, लेकिन कंफ्यूजन स्टेज में होते हैं, वो पूरी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। शुगर लेवल पहले से अच्छा हो गया है, पहले डाउन था, अभी वो 25% ग्लूकोज चढ़ाने के बाद में शुगर लेवल अच्छा है उनका।
इमरजेंसी सेवा के प्रोग्राम मैनेजर रोहित श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया कि रात 8:30 बजे उन्हें फोन पर सूचित किया गया कि कोतरपुर के पास एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला है। उसके बाद इमरजेंसी सेवा ने उन्हें 9:10 पर चंद्रमणि अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर रोष है। प्रवीण तोगड़िया की गुमशुदगी के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था और कथित तौर पर कुछ लोगों की पिटाई भी की थी। वीएचपी के वरिष्ठ नेता चंपत राय इस बारे में कहते हैं,
जब लापता हो गए तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 12 घंटे 11 घंटे कोई आदमी रीचेबल नहीं है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो इट इज नेचुरली इट इज सीरियस।
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और स्वास्थ्य कारणों से प्रवीण तोगड़िया का बयान नहीं लिया जा सका है। ये प्रवीण तोगड़िया के बयान के बाद ही साफ हो सकेगा कि वो क्यों सुरक्षा कर्मियों के बगैर निकले और कैसे बेहोशी की हालत में कोतरपुर इलाके में पाए गए। जांच में ये बिंदु भी महत्वपूर्ण होगा कि तोगड़िया कहीं किसी सियासी दबाव का सामना तो नहीं कर रहे। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी।
डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की गुमशुदगी से गरमाया सियासी पारा। कुछ जानकारों का मानना है कि ये मामला सतह पर जैसा नजर आ रहा है, भीतर इसकी कई और परतें हो सकती हैं। उनके अनुसार तोगड़िया की गुमशुदगी और खराब सेहत के दूसरे निहितार्थ भी हो सकते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने यही समझने के लिए बात की वरिष्ठ पत्रकार अजय उम्मट से।
पिछले 15 दिन में मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर तोगड़िया के खिलाफ 2-3 वारंट इश्यू हो गए हैं। गुजरात में भी करीब 1998 का जो केस था उसके अंदर 2017 में सडनली कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और डॉक्टर तोगड़िया के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गया और उसमें भी उनको पीसी में जाना पड़ा। अभी राजस्थान गंगापुर हॉस्पिटल से गंगापुर से एक वापस उनके सामने एक वारंट निकला है। मैंने सुना है कि हरियाणा में भी उससे भी एक वारंट उनके खिलाफ आ रहा है। तो सडनली ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर तोगड़िया के खिलाफ जो पुराने केसेस थे वो वापस खुल रहे हैं। ये कोइंसिडेंट युगानुयोग भी हो सकता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ डॉक्टर तोगड़िया की कुछ अनबन हो चुकी है। वीएचपी के जब वो इस बार कार्यकारी प्रमुख की चुनाव में भी जब लड़े तो कहा जाता है कि संघ परिवार और भाजपा का एक गुट जो था वो मानता था कि डॉक्टर तोगड़िया को अब कंटेस्ट नहीं करना चाहिए और उनकी जगह किसी और को ये स्थान 3 साल के लिए देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर तोगड़िया अपनी पूरी टीम के साथ वापस ये पदभार 3 साल के लिए संभालना चाहते थे और उन्होंने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ भुवनेश्वर की मीटिंग में प्रूव किया और उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि 70% से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री और बाकी सब पदाधिकारी उनके साथ है। तो शो ऑफ स्ट्रेंथ में जो आरएसएस के पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने डॉक्टर तोगड़िया की फेवर में जजमेंट दिया और तोगड़िया जो है अगले 3 साल तक विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख चालू रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ उनके काफी वैचारिक मतभेद है, राम मंदिर से लेके आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के काफी इश्यूज हैं।
वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट संकेत कर रहे हैं कि तोगड़िया की गुमशुदगी और सेहत के अचानक बिगड़ने को अनायास हुई घटना नहीं माना जा सकता। भारत दौरे पर आए इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज आगरा जाएंगे। इसके पहले कल नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। नेतन्याहू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को क्रांतिकारी नेता बताया। हमारे साथी वात्सल्य राय ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत से बात की और सबसे पहले दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की अहमियत के बारे में पूछा।
देखिए, इन समझौतों में कोई ऐसा बिग बैंग नहीं है, लेकिन जो स्प्रेड है इन समझौतों का, जिस तरह से डाइवर्स एरियाज में समझौते हुए हैं, उससे ये आकलन निकाला जा सकता है कि दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जो संबंध खाली सुरक्षा मुद्दों तक सीमित थे वो अब ब्रॉड बेस्ड बने, वो अब और दिशाओं में फैले और ज्यादा स्टेक होल्डर्स हों इस रिलेशनशिप के, भारत में और इसराइल में। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए अगर आप ये समझौतों का आर्क देखेंगे, इनकी डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, एग्रीकल्चर है, साइबर सिक्योरिटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, तो उसको लेकर कहीं पर ये एफर्ट हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए, क्योंकि अगर आपको किसी भी संबंध को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और उसी का ही अटेम्प्ट है।
एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से गर्मजोशी दिखाई जा रही है, नेतन्याहू मोदी को कहते हैं कि वो रिवोल्यूशनरी लीडर हैं, दूसरी तरफ उनका नाम लेकर नरेंद्र कहकर बात करते हैं, दोस्ती दिखाने की कोशिश की जाती है, नरेंद्र मोदी भी बहुत गर्मजोशी दिखा रहे हैं इनके स्वागत सत्कार के अंदर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रिलेशंस जो होने चाहिए, जिस तरह से व्यापार बढ़ना चाहिए, ये पिछले 5-7 साल में उतना नहीं बढ़ा है। इनके मुकाबले अरब देशों के साथ भारत का ज्यादा व्यापार है, तो ये भी कहा जा रहा है कि रिश्तों में हाइप ज्यादा है।
नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक बेस है रिलेशनशिप का, वो पहले से कमजोर रहा है, तो वो अचानक से बढ़ नहीं जाएगा। ये जो रिलेशनशिप है, ये पहले तो हम इसका जिक्र ही नहीं करते थे पब्लिकली, पहले तो ये संबंध हमारे पर्दे के पीछे होते थे, उसमें सिर्फ डिफेंस होता था, तो अब जब वो रिलेशनशिप को हम सामने ला रहे हैं और उसको हम एक तरह से रियल बना रहे हैं कि इसमें और लोग इन्वॉल्व हों, तो उसमें तो समय लगेगा, लेकिन ये है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए आने वाले समय में, जिस तरह का इनोवेशन इकोसिस्टम भारत को चाहिए आने वाले समय में, वो इसराइल हमको दे सकता है, और इसराइल को जिस तरह का मार्केट चाहिए वो भारत दे सकता है। तो अगर कहीं पर ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी को हम अंगली जामा पहना पाएंगे, तो उससे मुझे लगता है दोनों देशों को काफी फायदे होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रेड हमारा उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके काफी कारण है। अब जबकि हमको इनको आगे बढ़ाना है, तो हमको और स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करना पड़ेगा, और इसके चलते मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम इस ट्रेड को बढ़ता हुआ देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत का मानना है कि भारत और इसराइल दोनों को एक दूसरे की दोस्ती और कारोबारी संबंधों की पारस्परिक जरूरत बनी रहेगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जनरल रावत ने 2 दिन पहले डोकलाम को विवादित क्षेत्र बताया था। जनरल रावत ने यह भी कहा था कि भारत को अपना फोकस चीन की सीमा पर शिफ्ट करना चाहिए। चीन की प्रतिक्रिया को लेकर हमारे साथी वात्सल्य राय ने बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता से बात की।
देखिए, चाइना ने कई बातें आज कही है। एक तो ये कहा है कि इनका रिएक्शन है जनरल रावत का बिल्कुल सही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, दोनों देशों के रिश्ते जो सुधर रहे थे उसमें अड़चन आ सकती है ऐसी बातें करने से। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि डोकलाम हमारा है और उसमें तो कोई दो मत है नहीं, और हम पूरा दम लगा देंगे, हमारी राष्ट्रीय एकता, सॉवरेनिटी और डोकलाम हमारे साथ रहे इसके लिए। ज्यादा से ज्यादा डोकलाम चीन और भूटान के बीच में विवाद है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं। चीन ने ऐसा कोई बात नहीं कहा जो नया हो, वो बातें साफ है। एक तो यह है कि चीन के अंदर ही कई एक्सपर्ट्स का और कई नागरिकों का ये मानना है कि चीन ने पीछा हट किया था, कि भारत को जितना दबाना चाहिए था उतना नहीं दबाया। तो यहाँ की सरकार उन लोगों के नजर में अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो रेस्पेक्ट है, कम नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ की सरकार और जोर शोर से डोकलाम और भारत के विरुद्ध में बातें बोलती है। दूसरा यह है कि चीन थोड़ा सा परेशान है कि पाकिस्तान को सही माने में बॉर्डर में भारतीय सेना दबा रही है, और फूल के दबा रही है। पाकिस्तान का जो जो मोहरा चीन इस्तेमाल करते आया है वो थोड़ा कमजोर हुआ है। एक तो भारतीय सेना दबा रही है, दूसरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से पैसा बंद कर दिए हैं और दूसरी रुकावटें कर रहा है, इसलिए चीन तो नाराज है। अब सवाल ये है कि इन दोनों बातों के चलते जनरल रावत को क्या इस वक्त इस बात को छेड़ना उचित था?
मैं यही जानना चाहता हूँ कि जनरल रावत ने क्या चीन को बोलने का एक मौका दे दिया, किस तरह से इसे देखा जा रहा है?
ये मुझे अब लग रहा है कि जनरल रावत ने एक्सीडेंटल मौका नहीं दिया, ये सोची समझी रणनीति है। और शायद चीन को आप कितना भी होशियार समझे, चीन इस ट्रैप में गिर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनरल रावत को प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद ही ये बात हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्राइम मिनिस्टर अगर हिम्मत नहीं दिखाते तो पाकिस्तान में उस वो रूप हम नहीं ले पाते जो आज ले रहे हैं, जो पहले नहीं ले पाए थे। तो वो देखना चाहते हैं कि किस हद तक चीन जाती है और किस हद तक उनके अंदर कहर है।
बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता मानते हैं कि भारतीय सेना प्रमुख जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोच और संरक्षण का भाव हो सकता है। जज ब्रजगोपाल लोया के बेटे अनुज लोया ने रविवार को कहा था कि पिता की मौत को लेकर उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं है। अनुज ने यह भी कहा कि वो किसी तरह की जांच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई करने वाले जज लोया की मौत की जांच की मांग लगातार तेज हो रही है। कल कांग्रेस ने इस मांग को फिर उठाया। वहीं दिल्ली में हुए एक सेमिनार में शामिल पत्रकारों और वकीलों ने भी यही मांग की। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
कुछ कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो।
जज ब्रजगोपाल लोया के बेटे अनुज की मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन बाद दिल्ली में एक सेमिनार हुई। परिस्थितियों पर सांकेतिक प्रहार करती ये कविता पत्रकार निरंजन टकले ने वहीं पढ़ी। सीबीआई के विशेष जज रहे लोया की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाती पत्रिका द कारवां की रिपोर्ट निरंजन ने ही की थी।
न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर।
निरंजन ने जज लोया की बहन से हुई बात को एक बार फिर दोहराया।
अनुराधा जी ने यह भी बताया था कि बॉडी के नीचे, उनके गले के नीचे उनका चश्मा था, जो बहुत सरप्राइजिंग था। प्रेशर था, ऑफर थी, ये सारी बातें उन्होंने मुझे कही थी। फिर उसके बाद मैं और अलग अलग लोगों से मिला, मैं एडवोकेट मिहिर देसाई से मिला, जो मैंने कहा कि टू टेल द ट्रूथ एंड टू शेम द डेविल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई ट्राइड टू डू।
जज लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को हुई थी, तब वो एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए नागपुर गए थे। अपनी मौत के पहले वो गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे थे। इस मामले में अन्य लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी अभियुक्त थे, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। रविवार को लोया के बेटे अनुज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मीडिया में आ रही रिपोर्टों से उनके परिवार को बहुत तकलीफ हो रही है, उनका किसी पर आरोप नहीं है और वो कोई जांच नहीं चाहते। कल उनके दादा श्रीनिवास लोया ने भी यही बात दोहराई।
अनुज ब्रजगोपाल लोया ये मेरा पोता है, उसने जो कुछ कहा है उसके साथ हम सहमत है, इसके सिवा और कुछ हमको कहना नहीं है।
अनुज के साथ रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे उनके वकील ने कहा था कि लोया परिवार नहीं चाहता कि इस मामले पर राजनीति हो और किसी को इसका फायदा हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर चुप्पी साधने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कल एक बार फिर इस मामले में जांच की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी,
ये इंक्वायरी देश मांग रहा है और उस देश के एक भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। इंक्वायरी होती है कि नहीं होती है वो उच्चतम न्यायालय के हाथ में हो, कार्यपालिका के हाथ में वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारी मांग कोई भी आंतरिक फर्क हो, डिफरेंस हो उच्चतम न्यायालय में, उससे कोई संबंध नहीं रखता।
वहीं दिल्ली में हुई सेमिनार में मौजूद रहे लातूर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अन्ना राव पाटिल ने दावा किया कि जज लोया की मौत के बाद से संदेह की बात उठाई जा रही है।
वो सब कह रहे थे धोखा हो गया है, तुम्हारे दोस्त को धोखा हो गया है, वही बात उसी दिन से चल रही है। वो गए 1 दिसंबर 2014 को, दो दिन के बाद उनकी जब मौत अंतिविधि हो गई उसी दिन से बात चल रही।
इस सेमिनार में द कारवां के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल ने भी जांच की जरूरत पर जोर दिया।
A judge can die in circumstances that are at best questionable without a clear answer and a clear probe being set up is just unacceptable.
हरतोष सिंह बल कह रहे थे कि एक जज की मौत उन परिस्थितियों में होती है जो सवालों के घेरे में है। साफ जवाब न मिलना और जांच न होना किसी तरह मान्य नहीं है। हरतोष सिंह बल ने अनुज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए, यानी फिलहाल इस मामले में अब तक सामने आए जवाबों से सवालों की धार कुंद होती नहीं दिख रही।
वत्सल्य राय की रिपोर्ट। उधर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जांच के नाम पर इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल से वत्सल्य राय ने बात की।
मैं समझता हूँ कि जो अनुज इस बात की एक प्रकार से मांग ही कर रहे हैं या उस बात को कह रहे हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे किसी पर शक नहीं है, किसी पर मेरा आरोप नहीं है, इसका राजनीतिकरण न किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि सामान्यतया जैसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, मर्यादाएं हैं, तो न्यायपालिका की विषयों को उन तक ही छोड़ा जाए। वो क्या निर्णय करते हैं या क्या उसका संज्ञान लेते हैं और इस संबंध में इसका राजनीतिकरण न किया जाए। याचिका पड़ी हुई है, याचिका पर जो फैसला आएगा उसके अनुसार काम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसी जगह पर प्रांतिक लोगों के विषय को ड्रॉप कर देना चाहिए।
ये थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कल 2 दिवसीय यात्रा पर पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी का लखनऊ से लेकर अमेठी तक तमाम विवादित पोस्टरों से स्वागत किया गया तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को मिली कड़ी टक्कर और भारतीय जनता पार्टी की यहां लगातार बढ़ रही दिलचस्पी के चलते अमेठी संसदीय सीट राजनीतिक रूप से और दिलचस्प हो गई है। रिपोर्ट सुनिए समीरात्मज मिश्र से।
राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी अभी 2.5 महीने पहले भी आए थे, लेकिन तब वो पार्टी के उपाध्यक्ष थे। बतौर अध्यक्ष उनका ये पहला दौरा था तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस दौरे की शान शौकत में कोई कमी भी नहीं आने दी। लखनऊ एयरपोर्ट से पार्टी के बड़े नेता स्वागत में जुटे थे और फिर रायबरेली के रास्ते अमेठी पहुंचे राहुल गांधी का कई जगह स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने साधारण सी दुकान पर चाय पी और समोसे खाए तो गुजरात चुनाव से शुरू हुआ मंदिरों में दर्शन का सिलसिला यहां भी जारी रहा। सलोन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
चीन की सरकार हर 24 घंटे 50,000 युवाओं को रोजगार देती है और नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सबके सब प्रोग्राम मिला लो और पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार मिलता है।
अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह ऐसे पोस्टर लगाए थे जिनके बारे में कुछ भी बात करने से कांग्रेस के नेता कतरा रहे हैं। कोई पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखा रहा था तो कोई कृष्ण के रूप में। वहीं अमेठी में ऐसे पोस्टर भी मिले जिनमें राहुल गांधी के लापता होने की बात लिखी गई थी। सलोन में राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी सरकार की आलोचना की बल्कि यूपीए सरकार के दौरान अमेठी और रायबरेली में किए गए विकास कार्यों को भी जमकर गिनाया। लेकिन अमेठी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे साफ तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी ने यहाँ कुछ नहीं किया।
10 साल में राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, कोई परियोजना नहीं स्वीकृत कराया। हाँ, 10 साल के पहले संजय गांधी जब थे तो संजय अस्पताल बना, संजय गांधी जब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कुछ परियोजनाएं जो संजय गांधी ने स्वीकृत किया था, वरुण गांधी के पिताजी ने, प्रियंका गांधी के स्वर्गीय पति ने, उन्होंने जो परियोजनाएं स्वीकृत की थी उन परियोजनाओं को राजीव गांधी ने पूर्ण कराया।
अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जिस तरह से कड़ी टक्कर दी उसे लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है तो बीजेपी उत्साह से लबरेज। अमेठी के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि राज्य की सत्ता से लंबे समय से बाहर रहने और अब केंद्र से भी हटने के बाद कांग्रेस पार्टी की पकड़ यहां कमजोर हो रही है।
कांग्रेस से यहां के लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। विकास को लेकर के यहां के लोगों में गांधी परिवार की अनदेखी का आरोप हमेशा यहां की जनता ने भी लगाया है।
हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि अमेठी में पार्टी की पकड़ भले ही कमजोर हो लेकिन गांधी परिवार के सदस्यों के प्रति जन समर्थन शायद ही कमजोर पड़े। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने उनका जमकर विरोध किया था। उनके काफिले पर कथित तौर पर पत्थर भी फेंके गए थे। इस मामले में कल बिहार पुलिस ने 10 महिलाओं समेत कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
12 जनवरी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला हुआ वह हैरान कर देने वाला था। डुमराव प्रखंड के इस गांव से जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला लौटने लगा सड़क किनारे खड़े लोगों ने हमला कर दिया। जिस सड़क पर मुख्यमंत्री के स्वागत में नारे लिखे थे, उसी सड़क पर ईंट पत्थर बरसने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही है। अब तक की कार्रवाई के बारे में बक्सर के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बीबीसी को बताया।
जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें कारपेट पे पत्थर फेंके गए थे, इसमें अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की छापेमारी जारी है।
हमले में नीतीश कुमार तो घायल नहीं हुए, लेकिन कई सुरक्षा कर्मियों को चोटें आईं और कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। सत्तारूढ़ जदयू ने इसे राजद की साजिश बताया, जिसे राजद ने सिरे से खारिज किया। लेकिन जानकार इस नाराजगी को योजनाओं के सही कार्यान्वयन नहीं होने के साथ साथ कुछ अन्य बातों से जोड़कर देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद,
एक तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो हो रहा था, बिहार के रेवेन्यू घटा है, बालू पाप ने टैक्स लगाने की बात की, नदी से जो बालू है वो बड़ा बिजनेस था, जिसके उसके रोक लगाने से सारे कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ अफेक्टेड हुआ है, जो मजदूर तबका उसकी नाराजगी बहुत लेवल पर है, तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है जो उसका आउटबर्स्ट यहाँ पर नजर आ रहा है।
नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से सरकारी योजनाओं का हालचाल जानने करीब 10 यात्राएं कर चुके हैं, और इस दौरान विरोध प्रदर्शन की घटनाएं भी इन यात्राओं जितनी ही पुरानी हैं। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 14 सालों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राज्य के आदिवासी इलाकों के भरोसे सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन इस बार आदिवासी नाराज हैं। सोमवार को रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सामने ही आदिवासियों की नाराजगी सामने आई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सभी लोगों को आदिवासियों का वंशज बताकर मामले को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह की दलीलों से आदिवासी समाज की नाराजगी दूर होगी। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार का मामला अब तक मानवाधिकार संगठन या विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी उठाती रही है और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के आरोपों को खारिज करती रही है। लेकिन सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख आदिवासी नेता मोहन सिंह टेकाम की पीड़ा सार्वजनिक तौर पर फूट पड़ी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने टेकाम ने सरकार पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
आदिवासी समाज को वो जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी समाज एक भोले भाले सच्चा है। इस मंच के द्वारा माननीय मोहन भागवत जी से निवेदन करूंगा कि संघ के माध्यम से आदिवासियों को बचाने के लिए प्रयास करें, चिंतन मनन करें।
सरकार के खिलाफ जब विद्रोह के सुर फूटे तो बचाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद उतर आए। आमतौर पर आदिवासियों को भी हिंदू बताने वाले मोहन भागवत ने इस बार देश के सभी लोगों को आदिवासियों का वंशज बताकर मामले को संभालने की कोशिश की।
सुदूर वनों में बसने वाले आदिवासी समाज, वहां से लेकर तो अत्यंत तत्वज्ञान की पराकाष्ठा जिसमें पाई जाती है, नासदीय सूक्त एक ही विचार है। और अगर हम आदिवासी कहते हैं तो इसका मतलब ये हमारा मूल स्वभाव है, हम उन्हीं के वंशज हैं, समान पूर्वज है हमारे सब।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय भी सरकार से नाराज नजर आए। उनका कहना था कि सरकार को आदिवासी नेताओं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए।
लग जी ने सारी बातें बता दी, जो जहां गड़बड़ है, जहां नाराजगी है, मिल बैठ करके उसको ठीक किया जाएगा। वो
छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज पहली बार मजबूती से एकजुट होता नजर भी आ रहा है। सरकार से नाराज आदिवासियों ने अगले महीने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासियों की यह नाराजगी मुश्किल भरी साबित हो सकती है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
हम अपने श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। जज लोया से संबंधी जो रिपोर्ट हमने सुनाई थी उसमें लातूर बार के पूर्व अध्यक्ष उदय शामिल थे, हमने गलती से उन्हें अपनी रिपोर्ट में अन्ना राव पाटिल बताया है, क्षमा चाहते हैं। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कल अहमदाबाद में कथित तौर पर लापता हो गए, जिसके बाद वो अहमदाबाद के एक अस्पताल में आधी बेहोशी की हालत में भर्ती पाए गए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में प्रतिद्वंद्वी लड़ाकों से लड़ाई के दौरान कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के वापस म्यांमार भेजने का संयुक्त राष्ट्र तब तक समर्थन नहीं करेगा जब तक उनकी सुरक्षित वापसी का निगरानी का मसला साफ न हो जाए। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया कमलेश मठेनी ने। नमस्कार।